अगली टिप लीजिए, फिक्रों को दूर रखिए। ये फिक्रें करीब करने की चीज़ें नहीं होती, इनको दूर रखिए, क्योंकि हम इनको इतना करीब कर लेते हैं कि जैसे माइक को पास करें ना, तो आपके सांस की भी आवाज़ वो ले लेता है, सांस घुटने लगता है। आप देखिए, मुंह पे कपड़ा आ जाए ना, तो ब्लैंकेट ही आपका दम घोंट दे, आपका बच्चा आपके सर पे सवार हो और आपके नाक के पास आ जाए, आप कहते हैं पीछे हो जाओ, दम घुटता है चीज़ें बहुत करीब हो तो। इसी तरह ये दुनिया और इसके फिक्रे जितने करीब है ना, ये डिप्रेशन है। सोच सोच के 10 साल बाद पेश आने वाली बात को आज ही सोचे बैठे हैं। तो याद रखिए कि आराम मोमिन के लिए गफलत है और बेकारी कातिल है और वक्त गुजारी तातुल है। समझ आया ये जुमला? यानी लोग कहते हैं आराम कीजिए, मोमिन कहते हैं नहीं, ये गफलत होगी। लोग कहते हैं जरा थोड़ा से तो काम पीछे करके जरा रिफ्रेश तो हों, बेकार हैं। वो कहता है ये बेकारी मेरी कातिल है, मैंने सारा दिन बिस्तर पर सोना है। और वक्त गुजारी तातुल, तातील, छुट्टी, लोगों में गमो फिक्र और तकद्दुर करने वाले ज्यादातर वो होते हैं जो मुअत्तल और बेकार होते हैं। जी, यानी वो लोग ज्यादा दुखी होंगे जो रेस्ट ज्यादा करते हैं, जिनकी जिंदगी ज्यादा लग्जरियस गुजर रही है। जो लोग संजीदगी और नतीजा खेज काम के एतबार से मुफलिस हों, इनका सरमाया ख्यालात और अफवाहें होती हैं। लिहाजा हरकत में रहें, काम करें। क्या कहते हैं हमारे कल्चर में? हरकत में बरकत है। हमेशा मसरूफ रहें, तिलावतो तस्बीह करें, लिखने पढ़ने और लोगों से मिलने जुलने का काम करें। यानी वक्त को काम में लाएं, खाली बिल्कुल न रहें कि जैसे ही खाली हुए, तफक्कुरात, परेशानी और वहमो गुमान ने आपको अपनी अमाजगाह बना लिया कि खाली जगह शैतान का बसेरा होता है। हमारे यहाँ भी कहते हैं खाली घरों में जिन आ जाते हैं। साइंस भी कहती है कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हवा होती है। तो फिक्रों को दूर कीजिए ताकि आपका दिल दिमाग कोई पॉजिटिव एक्टिविटी में तो आए। तो क्या सीखा? तकाबुल कीजिए, एक तरफ लिखिए मोमिन और दूसरी तरफ लिखिए दुनियादार। मोमिन का आराम उसको गफलत लगता है, बेकारी उसको कातिल लगती है, वक्त गुजारी उसको तातुल लगता है। मोमिन संजीदा होता है, फिक्र आखरत उस पर गालिब होती है। इसके बरक्स दुनियादार आराम उसका पसंदीदा मशगल है, बेकारी उसका बहुत ही अजीज किस्म का मशगल है, वक्त गुजारी उसको बड़ी महबूबा कहते हैं, वक्त चलाओ, गुजारो, गुजारा करो। और गैर संजीदा और दुनियावी फिक्रों में उलझा हुआ होता है। अल्लाह हमें दुनियादार से उठाकर ईमान वाला बना दे। सवाल लिखिए, बेकारी के नताइज क्या निकलते हैं? नंबर एक, तफक्कुरात, फिर परेशानियाँ, तवहुमात यानी वहम आने लगते हैं, फिर अफवाहों पर कान रखता है, और खाली दिमाग शैतान का ठिकाना है। खुद से पूछ लीजिए, क्या मेरी परेशानियों की वजह मेरी बेकारी तो नहीं? देखिए, किसी का मर्द ले ऑफ हो जाए ना, जॉब ना हो, तो अक्सर घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, चख चख शुरू हो जाती है। वो मर्द जो बिला वजह काम से रुके रहे और वो उस मसरूफियत की जगह कोई और चीज़ों में रखे, आप नोट करेंगे कि वो ज़्यादा दुखी होते हैं। बेचारी मासियाँ घर घर जाकर सारा दिन काम कर कर फिर भी शाम को खुश आती हैं, और वो घर में सुबह से बैठा बिस्तर तोड़ रहा, कभी वो शराबी हो जाएगा, कभी वो चरसी होगा और डंडा पकड़ के मारेगा उसको कि देर से क्यों आई। आप सोचते हैं कि आप उसको सपोर्ट करें, वो तो आपका बड़ा शुक्रगुजार होगा। नहीं, अक्सर खवातीन पिसती हैं ऐसे ही बेकार मर्दों के हाथों। तो हमसे क्या मतलूब है फिर? नंबर एक, मसरूफ रहिए, तस्बीहो तहलील करें। तस्बीह हाथ में नहीं पकड़ने की जरूरत, चलते फिरते पड़े, वजू की भी शर्त नहीं है। बस जिस हाल में अल्लाह का कभी जिक्र करिए सुबहान अल्लाह की सूरत में, और कभी ला इलाहा इल्लल्लाह की सूरत में, कभी अल्लाह अकबर की सूरत में। तीसरी चीज़ जो आपसे मुझसे मतलूब है, वो इल्म हासिल करें और तामीरी काम करें। हजरत हंजला से एक रिवायत, अल्लाह के नबी के पास थे, आपने नसीहत की और दोजख का जिक्र किया। कहते हैं, फिर मैं घर में आया और बच्चों से हंसा और बीवी से खेला, फिर मैं निकला तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो मिले, मैंने इनसे बयान किया, उन्होंने कहा फिर मैंने भी ऐसा ही किया, फिर हम दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हंजला तो मुनाफिक हो गया। आपने फरमाया, क्या कहता है? मैंने सारा हाल बयान किया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मैंने भी हंजला की तरह ही किया। आपने फरमाया, हंजला एक साथ याद की है और एक साथ गफलत की है, यानी जिसको आप कहते हैं ना वक्त वक्त की बात है। अगर तुम्हारे दिल इसी तरह रहें जैसे वाज के वक्त होते हैं, तो फरिश्ते तुमसे मुसाफहा करें, शेक हैंड, यहाँ तक के रास्तों में तुमको सलाम करें। सही मुस्लिम की रिवायत है 6967। तो जब हंजला और अबू बकर सिद्दीक को गम था कि हम मुनाफिक हो रहे हैं, कि दिल की कैफियत जो अल्लाह के नबी की महफिल में बैठकर होती है वो घर जाकर नहीं होती, तो आप और मैं कैसे कह सकते हैं कि हम सुने ना सुने हम बराबर हैं। लिख लीजिए, जो बैठ कर कागज़ कलम लेकर सुन रहे हैं उनको इससे कई गुना ज़्यादा मिल रहा है उनकी नस्बत जो सिर्फ खामोशी से सुन रहे हैं, और जो खामोशी से सुन रहे हैं उनको उनकी नस्बत ज़्यादा मिल रहा है जो साथ दुनिया की घरदारियाँ भी कर रहे हैं और साथ फ़ोन भी सुन रहे हैं और मैसेजेस भी चेक कर रहे हैं। तो बात है टाइम मैनेजमेंट की, ये नहीं आप कह सकते कि मेरा काम का वक्त है, आप तैयारी पहले करके रख सकते हैं। ज़िंदगी में इस बात को बना लीजिए एक गोल, और ये चीज़ पहले भी मैंने इस कई लोगों के सवाल के जवाब में जिक्र किया है। अक्सर लोगों का गुमान है, जो मेरा नहीं है सच्ची जो बात है, बंदा खुद को ज़्यादा जानता है, कुछ लोग और स्पेशली स्टूडेंट्स और साथी जब ट्रिप्स के दौरान मिलते हो कहते हैं आप ये सब मैनेज कैसे करते हैं, आप तो सुबह भी ऑनलाइन होते हैं शाम भी होते हैं, ये वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, और आप तो इतना ट्रिप करते हैं सफ़र हैं आप, हम तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं तो हमें 2 दिन तक तो सेटिंग नहीं होती। मैं कहती हूँ हमारा तो 2 दिन के बाद जाने का वक्त शुरू हो चुका होता है, सेटिंग की क्या बात है। तो अक्सर लोग जो इस तरह के सवाल करते हैं मैं उनको जो बात कहती हूँ वही फ़ायदे की खातिर आपको कह दूँ कि मुझे जो चीज़ अपने बारे में पसंद होगी, जो काम करती हूँ पूरे फोकस से करती हूँ, इस पर टिप्स देती हूँ लोगों को, आपको भी दे सकती हूँ, आप भी अपने ही हैं। खाना पका रहे हैं तो अपने आप को बेहतरीन कुक साबित करें, सफाई करें तो मासी बने अपने आप को, मैं मासी हूँ, मैंने कोना खुदरा साफ करना है, भला मैं अपनी मासी से क्या चाहती हूँ, बस मैं खुद से भी वही कराऊंगी। शहर के साथ बैठे तो सब फोन बंद बातें बंद, ऐसे समझे कि न्यूली वेड हूँ, नई नई शादी है। बच्चों से लाड करें तो छोटे छोटे बच्चों को ऐसे गुदगुदाएं, ऐसे लाड प्यार करें कि इससे प्यारा खिलौना आपको नहीं मिलना, और पढ़ने पे आ जाएं तो सही पढ़ें, पढ़ाने पे आ जाएं तो सही पढ़ाएं, जो काम करें उसको कीजिए। एक वक्त में जो दो काम करने का शौक है बाज़ाहर बहुत अच्छा शौक है, लेकिन मैं इसको हाईली डिस्करेज करती हूँ, इल्ला ये मैं भी दो ही करती हूँ अक्सर, लेकिन जहन से दो काम इकट्ठे ना करें। बस आप देखिए कि कुछ देख रहे हैं तो सुन भी लीजिए, अगर अल्लाह ने आपको एबिलिटी दी आप दोनों को कॉप करेंगे, लेकिन दो मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी ना देखें, दो चीज़ें इकट्ठी ना सुने। आप दो चीज़ें सुने, कभी दिल भी चाह रहा होगा ना कि दो चीज़ों से सुन लो, कैसे सुनेंगे, वो सिर्फ आवाज़ें होती हैं। तो मल्टीटास्किंग करना भी एक फ़न है, क्या दो काम इकट्ठे चल सकते हैं और क्या दो काम नहीं चल सकते। फिर अमल का नुक्ता क्या है कि दिन के औकात कार की तकसीम कीजिए, दिन के मिनटों को साल, सेकंडों को महीने समझें, काम संवारें और सलाहियतों को बढ़ाएं, और इसी तरह से आप देखिएगा कि दिन ब दिन आप अपने आप के अंदर बेहतरी महसूस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टिप पे चलते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, कुछ मन चले कहते हैं वो तो पहली बात ही आ जाए कि नेकी करके खुद ही दरिया में कूद जाओ, क्योंकि लोग तो आपकी नेकी की कदर नहीं करेंगे, तो आपको क्या शौक लगा आप लोगों से कदर करवाने का। वाकई अगर आप लोगों से कदर करवाना चाहते हैं तो फिर आप तो यही करें, हालांकि जो अल्लाह के लिए करता है उसको ये कहने का सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर नेकी कर दरिया में डाल, इससे क्या मुराद है, जो आपके एहसान को भुला दे, नेकी का इनकार कर दे, तो इस पर रंजीदा ना हो, क्योंकि आपको अल्लाह से सवाब लेना है, इसलिए अपना अमल खालिसतन अल्लाह के लिए रखें, किसी के शुक्रिया की ना उम्मीद रखिए ना इसको ज़्यादा अहमियत दीजिए, और अगर आपने किसी पर एहसान किया हो फिर इसके कमज़ोर ज़र्फ़ का तजुर्बा हुआ, यानी वो आपके साथ बड़ा ही बुरा करे, क्योंकि याद रखिए जो मुहसिनों के साथ एहसान नहीं करता दुनिया में उससे बड़ा कोई नमक हराम नहीं होगा। और अक्सर हम अपने मुहसिनों को ही डॉच कर जाते हैं, जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया होता है हम उन्हीं के बारे में बुरा सोचने और बुरे रवैये अख्तियार करने लगते हैं, तो ये किसी इंसान के थर्ड क्लास होने की दलील है, उसके लोग कैलिपर होने की दलील है कि मुहसिनों के साथ बुरा मामला करें। बिलफर्ज अगर आपके साथ कोई ऐसी छिछोरी हरकत कर दे तो क्या करें, इसको महसूस ना कीजिए कि इसने आपकी नेकी और हुस्ने सुलूक का इतराफ़ ना किया, अपना सवाब अल्लाह से मांगिए। अल्लाह ताला अपने दोस्तों के बारे में कहता है कि वो अल्लाह के फजल व करम के तालिब होते हैं, अल्लाह ने अपने नबियों के बारे में फरमाया वो कहते हैं ला असअलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अलल्लाह, इस तरह के बहुत सारे जुमले हैं कुरान पाक में, यानी इस चीज़ पर मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, कह तो मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह के पास है, इसके पास किसी की नेमत नहीं जिसका बदला दिया जाए, हम तुम्हें खालिसतन अल्लाह के लिए खिलाते हैं, सूरह दहर में आता है, और तुमसे किसी एहसान या शुक्रिया के तालिब नहीं, इतने बेन्याज हो जाइए। शायर कहता है, जो खैर के काम करेगा इसका इनाम इसे ज़रूर मिलेगा, कि भलाई इंसानों और अल्लाह के यहाँ ज़ाया नहीं की जाती। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, तो आप ख़ुद भी सूरह रहमान में पढ़ते हैं, और इसी तरह याद रखिए कुरान पाक में आता है कि उसके यहाँ मोहसिनों का अजर मारा नहीं जाता। तो नेकी करके सिर्फ अल्लाह से बदले मांगिए और अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दें। वही है जो अता करता है और देता है, वही हिसाब लेता है और सजा देता है, वही राजी होता है, वही गजबनाक होता है। कंधार में बहुत से मुसलमान शहीद हुए। हजरत उमर ने सहाबा कराम से इनके बारे में दरियाफ्त किया, उन्होंने शहदा के नाम गिनवाए और कहा कि इनके अलावा और भी शहीद हुए हैं जिनसे आप वाकिफ नहीं। ये जुमले सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, लेकिन अल्लाह तो इन्हें जानता है। यानी उमर को एक लीडर होने के नाते या एक हुक्मरान होने के नाते नहीं भी पता, तो अल्लाह को तो पता है। मुराद ये है कि कुछ नेकियां लीडर्स के सामने आ जाती हैं, कुछ नहीं भी आती। तो आप मुतमईन रहिए, अल्लाह के पास हैं। कभी आपके लिखे को मिटा दिया जाता है, आपके लगाए को उतार दिया जाता है, आपके डिज़ाइन को बदल दिया जाता है, किसी को नहीं पता। आपको खुद नहीं दिख रही अपनी नेकी, आप कहते मेरा काम ज़ाया कर दिया। लेकिन लिख लीजिए, वो अल्लाह के दफ्तरों से कभी डिलीट नहीं होता। इसलिए कि माँ कद्दमू वासारहुम, जो ज़िंदगी में नुक्ता लग गया अल्लाह के किसी काम के रास्ते में, क्लिक हो गया, चाहे गलती से डिलीट का बटन क्लिक हो जाए, अल्लाह के हाजिर ज़ाया नहीं होता। और ये हौसला कुरान के बाद मिलता है। देखिए, हम हाईली हाईली रेकमेंड करते हैं कि जो अंसारुल्ला में आए वो कुरान के कदम कदम के सफ़र से गुजर चुका हो, सबीलुल जन्ना इसी का नाम है, उसके बाद सब्र आता है, बर्दाश्त आती है। अपनी कोशिशों को डिलीट होता देखकर भी बंदा कहता है कोई बात नहीं, अल्लाह के पास तो लिखा हुआ है। कुरान से गुजरे बगैर बंदे में कुछ खूबियां आ ही नहीं सकती, मान लीजिए, और उन खूबियों को अपनाने के लिए उस सफर से गुजरना पड़ता है। हजरत उमर का ये जुमला कि अच्छा अल्लाह को तो पता है, और फिर आपकी आंखों में आंसू, ये बताते हैं कि हजरत उमर का अपना ईमान बिल्लाह कितना मजबूत था। किसी बुजुर्ग ने एक नाबीना को फालूदा खिलाया, जो एक बेहतरीन डिश होती है। इनके घर वाले बोले, इस बेचारे अंधे को क्या मालूम कि इसने क्या खाया। अक्सर आपको भी ये जुमले सुनने पड़ते होंगे। फरमाया, हाँ, मगर अल्लाह तो जानता है। लिहाजा जब अल्लाह जानता है कि आपने क्या खैर का काम किया, क्या भलाई की, क्या एहसानात किए, तो फिर लोगों की क्या परवाह। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी बात है कि इसके बाद तो गिले शिकवे ख़त्म हो जाने चाहिए। और आज से हर प्रोजेक्ट पे काम करने वाला इसको अपनी मेन फोल्डर पे लिख ले, नेकी कर दरिया में डाल। जो कर दिए ना, उसको ना बार बार सहलाते रहे, ये किया आपके लिए, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने इस मौके पे भी आपकी मदद की, मैंने आपके लिए ये प्रोजेक्ट भी बनाया, मैंने आपको ये किताब भी पढ़ाई, मैंने आपको ये असाइनमेंट भी दी। बस इनको भूल जाइए, डंप इट, अल्लाह के दफ्तरों में डाल दीजिए, आप छोड़ दें। जो ये सोचते हैं ना कि मेरी कोशिशों की कदर नहीं की गई, वो आगे और कोशिश नहीं करेगा। मैं अपने ऊपर लेती हूँ, मैं आपको ये चार लफ्ज़ पढ़ा रही हूँ, मैं आपके ऊपर क्या एहसान कर रही हूँ, मेरी तो बात ही नहीं इतनी अच्छी होगी कि आपको समझ आए। मैं तो बस सीधी सीधी बात आप तक करके चली जाऊँगी, और दुआ कर दूंगी कि वो कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां गरचे बहुत शोख नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर आए मेरी बात। मैं तो इस तलब से उठती हूँ बैठती हूँ कि शायद मेरी वजह से किसी को फ़ायदा हो, शायद मेरी ही निजात का जरिया बन जाए। मुझे कोई एहसान नहीं जतलाना आप पे कि आप मुझे इस पे फूल भेजें, मुझे आप इस पे पत्तियां भेजें, मेरे तस्करे करें। मुझे सबसे ज्यादा घबराहट और कोफ्त माइक पे लोगों के मुंह से अपनी तारीफ या अपना तस्करा सुन के होती है। खुशी कब होती है? जब लोग कहते हैं कि हम में ये तब्दीली आई, हाँ मैंने ये बात सुन के पर्दा शुरू किया, हाँ ये बात सुन के मैंने घर बेच दिया, वो आपका दर्द सुन के मैंने उस दिन के बाद से नमाज नहीं छोड़ी। ये जुमले सुन के मेरा दिल ठंडा होता है, और सुनना भी चाहती हूँ। जो अमल करते हैं या जो बुराइयाँ छोड़ते हैं, ठंडक मिलती है कि अल्लाह ताला इसको मेरी निजात का जरिया बना, मेरे बड़ों की निजात का जरिया बना। लेकिन जो आकर मेरे गुण गाने लगे तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं बात मजीद सुनूँ। तो हमेशा याद रखिए, नेकी कर या दरिया में डाल वही करेगा जो एहसान के दर्जे पे जिएगा। सवाल पैदा होता है एहसान क्या है, तो तीन नुक्ते। नेकी में पहल करने वाले, फर्स्ट बिगिनर्स, साबिकून अव्वलून, ये नहीं आदत उनकी कि पहले रिवाज हो ले, फैशन हो ले, जरा टेस्ट कर लें भला इसका रिजल्ट क्या है, फिर कोई नेकी करेंगे। यानी वो खुद से आगे बढ़कर नेकियां करने वाले होते हैं, फिर इसी तरह बुराई के बदले भलाई करने वाले। और याद रखिए कि एहसान अल्लाह का पसंदीदा और महबूब फेल है। और सूरह रहमान जो मैंने कोट की बीच में 60 आयत है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं। एहसान करने का अजर बहुत ज़्यादा है, इसी तरह करके जतलाने पर सख्त वईद भी है। अल्लाह ताला हर नेकी का बदला कई गुना करके देगा। एहसान करके इसके अजर की ख्वाहिश सिर्फ अल्लाह से करें, और आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए दूसरों पर एहसान कीजिए। अल्लाह ताला के अहकाम क्या हैं इस मामले में आपके मेरे पास, तीन मुकाम कुरान पाक के नोट कीजिए। सूरत बकरा 195, सूरत कसस 28 और सूरत असरा 23। जाकर इनका तर्जमा लिख लीजिएगा कि कैसे अल्लाह की राह में खर्च करने और ख़ुद को हलाकत में ना डालने और हुस्नो सलूक करने का हुक्म दिया जा रहा है, और कैसे कहा जा रहा है कि जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया उसमें से आखरत का घर भी ले ले, यानी दुनिया का हिस्सा भी ले लेकिन आखरत को पीछे डालकर नहीं, और ऐसे एहसान करो जैसे अल्लाह ने एहसान किया। अहसिन कमा अहसन अल्लाहु अलैक। और इसी तरह इससे पता चलता है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी, और वालदैन के साथ एहसान करना कैसे, वबिल वालिदैनी एहसाना। तो इस टिप से क्या सीखा हमने, एहसान नहीं जताना, हर अमल खालिसतन अल्लाह के लिए करना है, अजर की उम्मीद सिर्फ अल्लाह तला से रखनी है, अपना हर मामला अल्लाह के हवाले कर दे। अभी मैंने ये जुमला बोला है ना, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे कंधों से कोई बहुत बड़ा गट्ठर उतरा और किसी ने साइड पे रख दिया, और ज़रा और अच्छा इसको करूँगी ना तो वो गट्ठर जहाँ से भी हट जाएगा। उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, अपने सारे मामले अल्लाह को दे दें। कहा करें अल्लाह जी मेरे काम आप करें मैं आपके करूँगी। हम कहते हैं अल्लाह जी मेरे पास अपने कामों के बाद आपके लिए वक्त ही नहीं मिलता, मैं जॉब के बाद कैसे आपके काम करूं, फिर मैं शॉपिंग करती हूं, फिर मैं खाने बनाती हूं, फिर मैं दोस्तों को खुश करती हूं, अल्लाह जी अब मैं कैसे करूं। एक दफ़ा कहिए मेरा सारा मामला अल्लाह के हवाले, फिर देखिए अल्लाह आपके कामों को करता कैसे है। सवाब सिर्फ अल्लाह से मिलता है। ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मौके आते हैं, अगर हम उनकी नाकदरी कर दें तो हम पीछे रह जाते हैं, यहीं खड़े रहते हैं जहाँ खड़े होते हैं। एक साथी हैं बहुत ही नाइस, अल्लाह ताला उनसे बेहतरीन काम ले, पूरे पूरे हाथ उनके कह लीजिए कि भरे हुए थे कुरान पाक का कोर्स करने से पहले, कई साल का तजुर्बा और हज़ारों में नहीं लाखों में पे थी। कुरान जब ज़िंदगी में आया दिन ब दिन बढ़ता गया, क्योंकि ये तो वो मोहब्बत है कि जितना आगे बढ़ो और अच्छी लगती है। कुछ चीज़ें होती इतनी टेस्टी हैं, चखो तो फिर छोड़ने को दिल ही नहीं करता, एक घूंट भर लो तो दूसरा घूंट भरने को तैयार है। तो खैर किस्सा मुख्तसर, बात तो लंबी है। कहने लगी अब मेरा दिल नहीं लगता अपने काम पे। मेरे से उन्होंने मशवरा किया, मैंने कहा क्यों, कहने लगी मुझे लगता है मैं हक नहीं देती, मेरा दिल दिमाग इधर ही होता है। उन्होंने कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना शुरू कर दिया कि जो वो अपने काम के साथ साथ कॉप कर रही थी, लेकिन वो कहते ना जैसे जौक और शौक लग जाता है ना, तो खैर जहनी तौर पे वो मुतमईन नहीं। फिर उसके बाद उनको उससे बड़े कामों के मौके मिले, कहने लगी मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। और सिर्फ शायद 1-1.5 साल था उनके ये कह लीजिए पेंशन पे आने का। मैंने उन्हें कहा कि जितना गुजर गए सो के जो है उसको कर लीजिए, आपका इतना अच्छा माशाल्लाह वहाँ रिकॉर्ड है और वहाँ पे दीन फैलाइए। किस्सा मुख्तसर, लेकिन बातें दिल की होती हैं, हुक्म तो कोई दे नहीं सकता, मशवरे भी नहीं मानते। एक दिन आई बड़ी माजरत खाखाना, कुछ घंटे गायब रहने के बाद, क्या हुआ खैरियत, कह रही सॉरी मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन मैंने अपने दिल के साथ इंसाफ किया, मैं रिज़ाइन करके आ गई हूँ। जिनको उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर अपना दिया वो उनका मुंह देख रहे हैं, रियली आप सही हैं, आप घर जाइए, 2-3 दिन सोच के वापस आए, मैं अभी इसको नहीं खोलता, मैं आगे नहीं देता, ज़ारे अपने से बड़े किसी को दिया होगा। उन्होंने कहा नहीं ये मेरा बहुत सोचा समझा फैसला, मैं जज्बातियत में नहीं और मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। उन्होंने उनको यहाँ तक कह दिया कि एक पूरा महीना मैं आपका लेटर आगे नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी नज़र में बहुत नासमझी की बात कर रही हैं। लेकिन दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। आज उनके दो दो हाथ पाँव दिमाग दिल वक्त नेकियों में रुझा हुआ है, और वो गवाही देती हैं कि जो पैसे मुझे वहाँ से मिलते थे, जिनकी वजह से एक रुकावट होती है या एक आदत हो जाती है या एक पैशन बन जाता है या मोहब्बत हो जाती है अपने काम से, वो कहती हैं मुझे अल्लाह ने इतने उसके बेहतर अल्टरनेट दिए हैं कि मैं सोचती नहीं। और यकीन कीजिए कि जो उन्होंने फैसला इज्जत से किया, मोहब्बत से किया, कुछ अरसे के बाद उसी इंस्टीट्यूट में एक ऐसी प्रॉब्लम आई कि कई लोग जो उन्हीं के कुलीग्स थे उनको बड़ी बेइज्जती के साथ वो जगह छोड़नी पड़ी। मैं यार आप क्या समझे इन बातों को? हम रोने रोते हैं गमों के, दुखों के, लेकिन बात यह है कि वो मालिक है ऊपर, वो ही हंसाता है, वो ही रुलाता है। निसाई की रिवायत है 2565, अबू जर से रिवायत है, तीन शख्स ऐसे हैं जिनसे कयामत के दिन अल्लाह अज़्ज़वजल बात ना करेगा, ना इनकी तरफ देखेगा, ना इन्हें पाक और साफ करेगा, और इन्हें दर्दनाक अज़ाब होगा। उनमें से एक अपने दिए हुए का एहसान जतलाने वाला, अपने तहबंद को टखनों से नीचे लटकाने वाला, और अपने सामान को झूठी कस्में खा कर रिवाज देने वाला। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला में एहसान जतलाने वालों में भी ना शामिल करे और बाकी चीज़ों में भी। फैसलों की एक ही घड़ी होती है, उसी में ज़िंदगी बदल जाती है। अल्लाह हमें हक के मुताबिक फैसले करने वाला बनाए। अगली टिप लीजिए, लानत, मलामत और एतराजात पर रंज मत करें। यानी आप तो इतने बदजुबान नहीं कि ये सब कुछ मुंह पे लाएं, लेकिन कभी लोग आपको ताने दें, बुरे बुरे जुमले बोलें, तो क्या किया जाए? तो एक जुमला याद कर लीजिए कुरान का, ये आपको बस थोड़ा ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। सूरत आले इमरान में अहले किताब की तरफ से पहुंचाई जाने वाली ईज़ाओं पे अपने नबी को कहा था, डोंट वरी, ये सिर्फ बातें करते हैं, कुछ अमली तौर पे तो इतने बुज़दिल हैं कि एक दफ़ा ना सामने आए आपके। इसी तरह एक और जुमला है, इनकी चालबाजियों पर तंग ना पड़िए, और इसी तरह इनकी अजियत रसानी पर ना जाइए, बस अल्लाह ही पर भरोसा रखिए, अल्लाह बेहतरीन कारसाज़ है। क्या ये बातें दिल पे उतरती हैं जब कुरान समझ आता है, ये आयत कौन सी है, ये कहाँ की है? क्योंकि ये सीरीज बड़ी लाइट रखना चाह रहे हैं, वरना मैं आपको एक एक कर रेफरेंस, आयत नंबर सब लिखाऊं, पर वो तो बहुत जगह और है। सुबह जो आयत बायत सुन रहे हैं उनको पता है कि एक एक सेकंड में तवज्जो जो है वो उस लफ्ज़ पे रहती है जिसको बोल रहे और सुन रहे होते हैं, क्योंकि वो एकेडमिक क्लास है। ये तो बस हम एक हल्का फुल्का अपने दुख सुख करने बैठ जाते हैं इधर। तो लिहाजा इन बातों में, जितनी बातें मैं यहाँ आके आपसे बोलती हूँ ना, जो मैप्स हैं वो एक किस्म की रिवीजन है, बाकी मैं आपके साथ 80% कुरान की आयतें ही बोलती हूँ जो आपके मेरे सामने हैं। और इस मौजू को और इस किताब को चूज़ करने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि इसमें इंसानों की बातें थोड़ी हैं, हर जुमले के बाद अगला जुमला या तो कुरान की आयत है या अल्लाह के नबी की बात है। हाँ, अंदाज़ बड़ा हल्का फुल्का है, आपको बड़ी लाइट सीरीज लगेगी ये, क्योंकि हम इसको रवायती अंदाज में नहीं पढ़ रहे। और अगर कोई ये ना सुन सुना सकें जिसको, तो वो कुरान के लिए कहाँ आएगा आपकी बात सुनने? उनको तो नींद आएगी, उनको तो बोझ लगेगा, वो तो लिख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो इस तरह की सीरीज जो इस वक्त चल रही है, ये नए लोगों से शेयर करें जिनको भी शौक लगा नहीं, जो गमों में मारे बैठे, जो दुखों में, बीमारियों में और स्ट्रेस में। अगर आप डॉक्टर हैं तो अपने मरीजों को ये रेफर कीजिए, आप साइकाट्रिस्ट हैं तो अपने क्लाइंट्स को ये पेश कीजिए। आप देखिए कि इंसानियत दुखी है, परेशान है, लेकिन क्या किया जाए कि परेशानियों के रोने तो रोते हैं लेकिन परेशानियों की दवा नहीं करते। उनका हाल उन मरीजों की तरह कि जिनको तकलीफ तो बहुत है लेकिन उस तकलीफ का इजाला वो नहीं कर पाते। तो क्या पता चला कि अगर कोई आपके ऊपर ऐसी बातें करता है गलत किस्म की, तो आपने उस पर फिक्र नहीं करनी। मूसा अलैहिस्सलाम पर उन्होंने तोहमत तराशी की, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को इनसे बरी कर दिया। सूरत अल अहज़ाब में जाकर पढ़ लीजिए। एक शायर कहता है, भरपूर और बहते समंदर में कोई नादान लड़का पत्थर फेंक दे तो इससे समंदर का क्या बिगड़ेगा? सोचिए तो सही, इतने बड़े समंदर का क्या बिगड़ेगा? हदीस में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, मेरे सहाबा की बुराइयां मुझसे बयान न करो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ से सलामत सदर के साथ निकलो, यानी मेरे दिल में किसी के बारे में कोई ग्रज, कोई बोझ ना हो। और बात तो ये सच है, कभी भी पीठ पीछे किसी की कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे दिल पर बोझ पड़े, जिसकी वजह से दिल खराब होने लगे। और इसी तरह से क्या सीखा कि लानत, मलामत और एतराजात पर रंज मत करें। ये क्या है, कैसे, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। देखिए, लानत और मलामत हमारे दीन में मना है, इसको कई मुख्तलिफ मानों में आप समझ सकते हैं। मसलन धुतकारना, जलील करना, फिटकारना, जजरो तौबीख करना यानी रन टिपट। खाम खा हमारे यहाँ तो कुछ लोगों की आदत है उस पे ये और इस पे ये, और फुला ऐसा तो फुला ऐसा। फिर इसी तरह आप देखिए कि अम्बिया कराम पर तोहमतें लगीं, एतराजात हुए। बस हजरत मूसा पर जादूगर होने का इल्ज़ाम लगा, हजरत यूसुफ के किरदार पर झूठी तोहमत लगी, और भाइयों ने ही उनको चोर तक कह दिया। सबसे बढ़कर देखिए अल्लाह के नबी पर कितने इल्ज़ाम लगे, आपको काहिन नजूमी शायर मजनू तक कहा गया। लेकिन अल्लाह के नबी का क्या तर्ज़ अमल था सुन लीजिए। आप फोहश को ना थे ना आप लानत मलामत करते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ताज्जुब नहीं होता कि अल्लाह ताला मुझसे कुरैश की गालियों और लानत मलामत को किस तरह दूर करता है? ज़रा सोचिए, इतना प्यारा शख्स लोगों की बातें सुने और लोग उसको कह लीजिए कि सादिक और अमीन की जगह काहिन और मजनू और दीवाना कहें। मुंह पे आके बातें करते थे। अबू लहब की बीवी की बातें जाके कुरान में पढ़िए, अबू लहब के अपने जुमले सुन लीजिए। आप में इतना बर्दाश्त कर सकते हैं इस दीन के लिए? तो अल्लाह के नबी कैसे रिएक्ट करते थे? फरमाए, वो मुझे मुजम्मम कहकर बुरा कहते हैं, इस पर लानत करते हैं, हालांकि मैं तो मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बुखारी की रिवायत का खुलासा है 3533। तो छोटी छोटी बातों पे बहुत डिफेंसिव ना हुआ करें। अच्छा, बाज लोग अपना इतना दिफा करते हैं जितना शायद इस्लाम का दिफा करना चाहिए। 1 मिनट की कोई बात करे कहते नहीं तो रुकिए रुकिए प्लीज रुकिए रुकिए, पहले मैं अपनी सफाई पेश कर लूँ। भाई ओके इट्स ओके। कई दफा घर में झगड़ा आपको होता है क्यों बढ़ता है, बात का बतंगड़ क्यों बनता है? आप आगे से सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, आप अगले से कहें और बोल लो और बोल लो कुछ और, एनीथिंग एल्स प्लीज गो अहेड रिलैक्स आई एम रेडी टू लिसन। मारो पत्थर मुझ पे, ये करो वो करो, देखिए तो सही अगले की हवा कैसे निकलती है जी। तो क्या करें फिर? दो लफ्ज कह लीजिए, इग्नोर ग्रेसफुली। आप क्यों अपनी बेइज्जती कराते हैं? ऐसे बंदे क्या कि आप क्यों बोले जिसकी बात पहले ही नहीं आपको अच्छी लगी? तो हम क्या करें? खामोश रहें। खामोशी बहुत बड़ा जवाब होती है लोगों को। ईंट का जवाब पत्थर से मत दीजिए, ईंट से भी ना दीजिए, ईंट के बदले में किताब दे दीजिए कि किताब पढ़ लो। और इसी तरह बददुआओं के जवाब में दुआएं दीजिए, और मैं कह सकती हूँ कि दुश्मन दोस्त बनेंगे। यही नुस्खा कुरान ने आपको मुझे सिखाया। और ख़ास तौर पे हम ख़वातीन माजरत के साथ कुछ ज़्यादा ही लान तान करती हैं। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, औरतों की जमात तुम सदका खैरात करो, कसरत से इस्तगफार किया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में तुम औरतों को ज़्यादा देखा है। इनमें से एक समझदार औरत थी, कहने लगी अल्लाह के नबी हमारे जहन्नुम में ज्यादा होने की वजह क्या है? ये है असल पॉइंट, वजह ढूंढा करें, हम तो लफ्जों में खो जाते हैं। तो आपने फरमाया, तुम लानत व मलामत ज्यादा करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो, मैंने बावजूद इसके कि तुम नाकिसुल अक्ल यानी नक्स है ना औरत की अक्ल में, और नाकिसुद दीन हो, नक्स है, हर महीने कुछ नमाजें ही छूट जाती हैं उसकी, हाँ, और तुमसे ज्यादा मर्द की अक्ल को मगलूब और पसपा कर देने वाला किसी को नहीं देखा, यानी हो कमजोर लेकिन अक्लमंदों की अक्ल को मार देती हो, ये मुराद है। इस औरत ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी हमारी अक्ल और दीन का नक्स क्या है, यानी दलील मांगी। आपने फरमाया, तुम्हारी अक्ल की कमी और नुकसान तो यह कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है कुछ केसेस में, और दीन की कमी यह कि तुम कई दिन ऐसे गुजारती हो कि इसमें ना नमाज पढ़ती हो और ना रोजे रख सकती हो। इब्ने माजा की रिवायत 4003। तो जवाब इतना वाजे है कि कुछ मेरे बोलने की जरूरत नहीं, और वैसे भी डर यह कि आप मुझसे नाराज ही ना हो जाएं। तो आगे चलते हैं।